भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है दोस्तों आपका योग रहस्य में। योग रहस्य में छुपा है आपके अपने सत्य का रहस्य, आपके स्वास्थ्य का रहस्य, आपकी समृद्धि का रहस्य। आज से पहले हम कभी योग की बात करते तो ऐसा लगता था कि हिमालय पर्वत पे एक योगी कोई एक पांव पे खड़ा है या उल्टा कहीं खड़ा है। ये हमें आज के इस दौर में आके ठीक से मालूम हुआ है कि योग हर एक के लिए, सबके लिए कितना जरूरी है। और इसके लिए आपको किसी हिमालय पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहते हुए प्राणायाम, आसन, ध्यान और समाधि की अवस्था तक जा सकते हैं। हिमालय आपका अपना जो ये मनोस्थिति का स्थल है, ये ऊंचा स्थल है, यहां आप अपने आप को बहुत ऊंचा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी मनोस्थिति से, आप अपने व्यायाम से, आप अपने प्राणायाम से अपने शरीर को, अपनी फिटनेस को और बेहतर बना सकते हैं और इस मानव जीवन का संपूर्ण सुख पा सकते हैं। और आज योग रहस्य में हमारे बीच विशेषज्ञ हैं, मेहमान हैं, जिनके साथ हम योग के बारे में चर्चा करेंगे और इस योग के अमूल्य खजाने से आपकी झोली को भरना चाहेंगे। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच पधारी हैं राजयोगिनी दीदी उषा जी, जो कि शिक्षिका हैं, राजयोग की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। हमारे बीच हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हैं। हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। और हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, हमारे बीच में है योगा के इंस्ट्रक्टर, उसकी विशेषज्ञ बहन हर्षिता गुप्ता जी। और आप सबके साथ हम मिलकर कुछ विचार बांटेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे आज के इस योग रहस्य में। तो मैं डॉक्टर गुप्ता जी का स्वागत करते हुए उनसे ये जानना चाहूंगा कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है पेशेंट्स के साथ, हृदय रोगियों के साथ। आपने बहुत बड़ी रिसर्च जो है हृदय रोगियों पर की है, बहुत वर्षों का आपका अनुभव है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये एक्सरसाइज, योगा, मेडिकल साइंस किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं, जुड़ते हैं।
आज हृदय रोग सारे विश्व में नंबर वन किलर है। सबसे ज्यादा हार्ट, सबसे ज्यादा डेथ्स इसी कारण से होती हैं। लगभग 30% डेथ्स हार्ट अटैक से ही होती हैं। और आज सारे विश्व के सामने समस्या है, स्पेशली भारतवासियों के लिए सबसे, ये मतलब जो है हमारे सामने सबसे बड़ा नंबर वन इश्यू कहें आज हम, तो आज ये है। और इसके लिए जो आज नेचुरल जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी जो हम करते हैं, मेडिसिन भी हैं, वो इसकी जड़ को ठीक नहीं कर पाती है। तो इस पे ये आज क्लियर सभी ने मान लिया है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है ये, हमारी गलत जीवन शैली इसके लिए उत्तरदायी है
जी।
स्पेशली इसमें एक तो आज जो मानसिक तनाव, जो आज का एक इस युग को हम मानसिक तनाव का युग कहते हैं, हमारी आर्टरीज बचपन से ब्लॉक होना शुरू होती हैं 4-5 साल की उम्र से, और होते 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 जो पहले 70 साल में ब्लॉक होती थी और फिर क्रैक होती थी, अटैक होता था, और 100 में से 1 आदमी को होती थी 1960 में, आज ये 100 में से 15 लोगों को होती है और 20-25 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता है
जी।
मतलब ये फास्ट हो गया, जो चीज पहले थी 70 साल की उम्र में, आज 25 साल में।
तो ये तनाव और जो जीवन शैली है, दोनों के कारण,
तनाव और जीवन शैली, बेसिकली जीवन शैली, तनाव जीवन शैली का पार्ट बन गया है
जी।
और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, लेट सोना, लेट उठना, लेट नाइट डिनर, सैर ना करना, व्यायाम ना करना। एक व्यायाम की बहुत एक लगभग दिखने में, जो लोग व्यायाम नहीं करते हैं उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सरसाइज
जी।
तो ये एक बड़ा कारण है। और प्लस गलत खान पान, गलत खान पान में जैसे गरिष्ठ भोजन जो खाते ना, फैट इसमें ज्यादा होता है, तली चीजें जिन्हें हम फास्ट फूड्स कहते हैं, आज लोग मार्केट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, वो एक बड़ा कारण है। तो मैं समझता हूं इसको ये डिजीज जो है, और हमने जो पिछले 19 साल से रिसर्च किए माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल जो विश्व में नंबर वन ट्रायल माना गया है, फिर आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल किया है, और हमने उसमें पाया कि जीवन शैली परिवर्तन से एक हम स्वास्थ्य वर्धक जीवन शैली जिसे हम थ्री डायमेंशनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस जीवन शैली कहते हैं जिसमें हम तीनों बातों को देखते हैं,
आहार भी उसमें आपने
आहार भी उसमें आ जाता है, उसमें एक तो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस, दूसरा हमारा मानसिक, क्योंकि मन की बात बहुत है, मानसिक हमारा स्वास्थ्य भी हो और खुशी भी हो, और तन का भी है, तन भी हमारा स्वस्थ हो और उसमें हमारा खुश भी हो, तन की भी एक सेल मेरी खुश हो, मुस्कुरा रही हो।
ओके, तो मतलब एक एक सेल भी मुस्कुराता है। हाँ। तो फिर दिल भी मुस्कुराता होगा,
दिल तो सेल्स का ही बना होता है
जी,
तो दिल भी मुस्कुराए,
तो जो दिल कहते हैं ये मानता नहीं है, अगर मुस्कुराएगा तो
मान जाएगा
अच्छी शैली से वो मान जाएगा।
तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं मानसिक और आध्यात्मिक को छोड़ दूं
जी,
तो अगर फिजिकल लेवल पे आ जाए तो फिजिकल लेवल पे व्यायाम का बहुत महत्व है, और जब मैं व्यायाम की बात करता हूं तो व्यायाम में हमने जो देखा है और जो आज रिकमेंडेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की कहो, WHO की कहो, या अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की कहो
जी,
या भारत की जो संस्थाएं हैं, कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो उनकी भी रिकमेंडेशन आज सैर के लिए है।
ओके, ये हार्ट जो से जुड़े रोग
हार्ट की बात नहीं है
जी,
इसमें बहुत सारी जीवन शैली वाली डिजीज आती है।
ओके,
जैसे ब्लड प्रेशर जीवन शैली से रिलेटेड है।
ओके,
डायबिटीज जीवन शैली से रिलेटेड है, मोटापा जीवन शैली से रिलेटेड है, हाई कोलेस्ट्रॉल जीवन शैली से रिलेटेड है, GERD जिसे कहते हैं, एसिड बनता है, एसिड रिफ्लक्स होता है छाती में पीछे चलता है, जीवन शैली से रिलेटेड है, हमारी बोन प्रॉब्लम जीवन शैली से रिलेटेड है, काफी सारी हार्मोन्स की बीमारी जीवन शैली से रिलेटेड, थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे
मतलब जीवन शैली ठीक की जाए तो बहुत सारा कुछ ठीक हो सकता है,
80% बीमारियां जीवन शैली से कनेक्टेड है।
ओके,
आज मतलब आज के समय में तो जीवन शैली अगर हम परिवर्तन कर ले, और जीवन शैली का एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, हमारे यहां हमारे हाइपोथैलेमस में दोनों ब्रेन है हमारे पास, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन,
लेफ्ट ब्रेन,
और दोनों का कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस में एक क्लॉक है, घड़ी है, जिसको हम जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं, और घड़ी में टाइम फिक्स है हर चीज का, सोने का टाइम, उठने का टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें किस समय सोना है, किस समय उठना है,
मतलब ये दो किनारों को ठीक कर लिया जाए तो बाकी सब कुछ बीच में फिट हो सकता है।
अगर हम इसको ठीक नहीं कर सकते तो हम जीवन शैली हमारी ठीक हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल,
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखा गया हमारे सोने का समय, टाइम टू गो टू बेड एंड टाइम टू गेट अप फ्रॉम द बेड
जी,
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एक इसका, उसमें मेडिटेशन करने का समय भी है, उसमें प्लानिंग करने का समय भी है, उसमें सैर करने का समय भी है, उसमें नाश्ता करने का समय भी है
जी,
काम करने का समय भी है, लंच करने का समय भी है, डिनर करने का समय भी है। अगर हम उस क्लॉक को फॉलो करें तो हमारी जीवन शैली ठीक हो सकती है।
बहुत अच्छी बात बताइए आप।
तो इस पे काफी बड़ी रिसर्च हुई है, आज वर्ल्ड में बहुत इस पे काम हुआ है, और आज प्रॉब्लम क्यों हुई है, चाहे जितनी जीवन शैली की बीमारियां हुई हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, मोटापा, आज हम वर्क प्रेशर के कारण, टाइम प्रेशर के कारण, उस जीवन वो जो हमारी अंदर की क्लॉक है उसको सुनते नहीं है।
बिल्कुल,
मेरी बिजनेस, मेरा ऑफिस 10 बजे तक है, मैं 10 बजे तक काम करके फिर घर पे आके खाना खाता हूं।
बहुत लोग करते हैं बिजनेसमैन ऐसे ही करते हैं, जो दुकानदार
तो
है
तो 11 बजे डिनर करते हैं
जी, होता है।
सोने का समय उसमें फिक्स है, मुझे उसमें सोना ही है, मुझे अपने काम को ऐसे एडजस्ट करना है कि मैं वो अपनी क्लॉक को डिस्टर्ब ना करूं।
तो सबसे बेहतर जो वक्त उठने का और सोने का कौन सा है?
सोने का समय सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअली सोने का समय है। अगर हम समय पर सो जाते हैं, समय पर उठ भी सकते हैं
जी,
और सोने के पहले भी हमें ऑडिट करना बहुत जरूरी है, अच्छी क्वालिटी की नींद आने के लिए ऑडिट करना बहुत जरूरी है।
किस चीज का ऑडिट करना?
सारे दिन को।
ओके,
सारे दिन को ऑडिट करना, ऑडिट समझ,
क्योंकि व्यापारी होगा वो तो सोचेगा थोड़ा हिसाब किताब लगा ले,
मतलब ऑडिट माना मतलब सुबह से लेकर शाम तक आज मैंने क्या किया है
जी, कर्मों का
ऑडिट है ना,
सोच का ऑडिट
जी, गोल का ऑडिट है ना, तो आज मैंने सुबह से लेकर रात को क्या किया है, अगर मैं ऑडिट कर लेता हूं, बिकॉज क्या होता है, मेरे जो किए हुए कर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, काफी चीज सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, और जैसे ही हम सोते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है
जी,
अगर मैंने उसको ऑडिट नहीं किया है तो वो रात में आके सबकॉन्शियस माइंड में वो इमर्ज होगा और मेरी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी और नेक्स्ट डे मैं उठ नहीं पाऊंगा, नेक्स्ट डे मैं फ्रेश नहीं होऊंगा। तो ऑडिटिंग करने के बाद अगर आप सोते हैं तो आपकी जो नींद है बहुत गहरी नींद होती है, सपने कम होकर के डीप स्लीप ज्यादा होती है, एनआरईएम स्लीप ज्यादा होती है
जी,
और आप सुबह फ्रेश उठेंगे। तो इसमें सिर्फ 5 या 10 मिनट ही लगते हैं ऑडिट करने में, वो ऑडिट करिए और उसके बाद 1-2 मिनट मेडिटेशन करके सो जाइए और फिर उसके बाद 10 बजे आप सो जाइए। और अगर आप पहली साइकिल ऑडिट करके सोते हैं 10 से 12 की, लगभग 110 मिनट की साइकिल होती है, 90 से 110 मिनट की साइकिल होती है, तो पहली साइकिल में ही आपको, अगर हम एवरेज 120 मिनट की साइकिल ले लें, आज का इंसान ज्यादा फास्ट है, उसकी ब्रेन रिदम बहुत फास्ट होती है, तो उसको हम 120 मिनट दे दें सोने के लिए एक साइकिल के
जी,
तो उसमें देखने में आया कि अगर हम सही ढंग से ऑडिट करके सोएं तो 110 मिनट आप एनआरईएम स्लीप ले सकते हैं।
अच्छा, इतना समय तक,
इतना लंबे समय तक।
ओके,
सही ढंग से और ऑडिट नहीं करेंगे तो आपकी नींद आधी आधी हो जाएगी।
बिल्कुल, बहुत सुंदर इन्फॉर्मेशन दी डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आपने हमें, जीवन शैली के बारे में, सोने के बारे में, उठने के बारे में, आहार के बारे में। और मैं हर्षिता बहन से कहना चाहूंगा कि आपका योग इस बारे में क्या कहता है कि सुबह कितने बजे उठना चाहिए, जैसे उन्होंने व्यायाम की बात की, सैर की बात की, आप हमें अपने नजरिए से, एक योगा इंस्ट्रक्टर के नजरिए से आप हमें बताइए।
योगा भी यही कहता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ होना बहुत जरूरी है। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है उस समय हमें उठ जाना चाहिए। सोने का टाइम यही कहता है कि 10 से 4 सोइए, उठिए और व्यायाम कीजिए। योगा भी यही कहता है। ठीक है, मैं हार्ट डिजीज वालों के लिए डेफिनेटली नहीं कहूंगी कि उन्हें योगा करना चाहिए। सैर भी एक अपने आप में बहुत अच्छा व्यायाम है। कुछ आसन हैं जो आप, अगर आप इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन वो कुछ आसन आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। जैसे कुछ आसन हैं जो मैं रोज करती हूँ और मैं, मुझे पता है कि आगे के 10 सालों में भी मैं वही कंटिन्यू करूंगी और वही इनफ है एक हेल्दी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए
जी।
तो एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए आप जल्दी उठिए, व्यायाम करिए, अच्छा लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक में भी यही कहा जाता है कि सात्विक भोजन लीजिए। योगा में भी आपके दोषों के हिसाब से आपको भोजन के बारे में बताया जाता है। तो एक ओवरऑल पैकेज है योगा आयुर्वेदा, दैट गोज हैंड टू हैंड। तो एक हेल्दी लाइफ के लिए डेफिनेटली जो डॉक्टर साहब ने कहा और योगा भी यही कहता है।
बहुत अच्छा कहा आपने हर्षिता बहन, हमें योगा भी यही कहता है कि किस तरह से आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, कब आपको उठना है, कब जागना है, एक पूरा पैकेज है। हमारी राजयोगिनी दीदी उषा जी हमारे बीच हैं, बहुत अनुभवी हैं, दशकों का उनके पास राजयोग का, जीवन का अनुभव है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे।
ये तो बहुत सही कहा है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए भी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने बायो क्लॉक को हम फिक्स कर ले और उसकी सुने, और वो अगर हम रात को सोते समय ही उसको फिक्स कर देते हैं कि मुझे 4 बजे उठना है, तो वो बायो क्लॉक हमें उठा ही देता है। उसमें व्यक्ति को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है
जी।
और उठ करके वो थोड़ा फ्रेश हो करके मेडिटेशन में बैठ सकता है और ध्यान भी करके, और फिर मैं समझती हूँ ये प्राणायाम और योगा करें। मैंने पहले ध्यान करना ज्यादा आवश्यक है, फिर फिजिकल एक्सरसाइज,
क्योंकि मन को एक सही दिशा, शुद्ध ऊर्जा से आप भर सकते हैं।
क्योंकि आज योगा करने के लिए भी फिजिकल कर्मेंद्रियों को भी जिस तरह से चलाना है एक्सरसाइज में, तो जब तक हमारा मन, उसको हम जैसे एक दिशा दे देते हैं तो फिर वही हमारी इंद्रियों को भी ऑर्डर पास करता है
जी।
तो मन को सलामत रखे पहले, मन को बहुत अच्छी तरह से शांत करें, रिलैक्स करें ध्यान के माध्यम से, तो फिर हमारी जो फिजिकल एक्सरसाइजेस है वो भी शायद बहुत अच्छी हो सकती।
योगा की शुरुआत हमेशा शांति से की जाती है
जी,
शांत होकर की जाती है। और मुझे ऐसा भी लगता है, कहते हैं आदतों में बड़ी ताकत होती है, यदि थोड़े दिन कोई डॉक्टर साहब ये आदत डाल ले तो अपने आप वो साइकिल में आ जाएगी और वो होने लगेगा। तो मेहनत बहुत थोड़े दिन की है जब तक कि वो आदत बने
जी। थोड़े दिन अगर कर लिया तो नेचुरल है, उसके बाद अगर व्यक्ति को कहीं बाहर जाना भी पड़ा और लेट भी आकर के सोए तो भी उसका बायो क्लॉक उसको 4 बजे उठा देगा
जी। जी, कितना सहज है, कितना आसान है यदि हम करना चाहें, यदि हमारी विल हो और हम इसके महत्व को समझें। मैं हर्षिता बहन आपसे जरूर चाहूंगा कि आप हमें कुछ योगा के आसन, कुछ और कोई विधि बताएं जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकें, उन्हें ला सकें।
जरूर, स्टार्ट करती हूँ प्राणायाम से, जिसमें मैं लूंगी ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर, योर बैक स्ट्रेट, डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. And now close your left nostril. The mudra should be like this. Your first two fingers are bent. And then just close your left nostril. And first start from exhalation. So you're exhaling from your right nostril and then inhaling from your right. Exhale. Inhale. Now close your right nostril and exhale from your left one. Inhale. और बिगनिंग में आप 20 साइकिल्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, पर जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो रिदम, प्रेशर, टाइमिंग, जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए.
और इसमें बहुत जोर लगाना है हर समय नहीं, या आराम से करना है?
बहुत इजीली ट्राई टू इनहेल एंड एक्सहेल फ्रॉम योर एब्डोमेन. एक ये ऐसा प्राणायाम है जिसमें आप अपने एब्डोमेन से आपको ब्रीथिंग करनी चाहिए. एंड दिस इज द अल्टीमेट मेडिसिन फॉर योर मेंटल स्ट्रेस.
Okay.
It releases your anxiety, your stress and everything. और दूसरा आसन मैं लेती हूँ आज वज्रासन. आपके knees together and आपको अपनी heels पे बैठना है.
जी.
And आपकी back straight होनी चाहिए. And hands in any meditative posture, आप अपने hands अपने knees पे रख सकते हैं और इस तरह रख सकते हैं. और ये एक ऐसा आसन है जो आप इट हेल्प फॉर डाइजेशन, तो आप अपनी मील्स के बाद इसे जनरली प्रैक्टिस कर सकते हैं. इट टोन्स योर लेग मसल्स. और नेक्स्ट आसन मैं बताऊंगी त्रिकोण आसन, जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लेग्स मसल्स के लिए, आपके वेस्ट के लिए एंड फॉर योर पेल्विक एरिया एंड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो. आप अपने लेग्स ओपन कर लीजिए. और जो आपका राइट लेफ्ट फुट है वो होना चाहिए आउट और ये वाला होना चाहिए 90 डिग्री पे. और आपकी हैंड्स आपके शोल्डर लेवल पे एंड देन थोड़ा सा रीच आउट. आपको अपनी वेस्ट से बैंड करना है, ठीक है? तो आपका ये जो एरिया है, जो अपर बॉडी है, ये स्ट्रेट होनी चाहिए. रीच आउट और आपको बस बैंड करना है फ्रॉम योर हिप जॉइंट्स, फ्रॉम योर साइड वेज. कब तक? जब तक आपका जो हैंड है वो आपके लेग्स को टच ना करे. हमारा यहाँ पे एम नीचे जाना नहीं है, हमें अपनी जो ये एरिया है सिर्फ यहां से बेंड करना है. एक्सहेल एंड ओपन योर चेस्ट एंड ट्राई टू लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड.
और ये 90 डिग्री पे हो तो अच्छा है.
या तो अच्छा है. गहरी सांस ले यहां पे. इनहेल और अपने लेग्स टर्न करें. अब जो आपको राइट लेग है वो होगा 90 डिग्री पे और जो लेफ्ट फुट है वो होगा इन आउट. इनहेल और एक्सहेल करते हुए बेंड करें.
इसका क्या फायदा है इस आसन करने का?
आपका जो यहाँ पे जो मसल्स है, वेस्ट मसल्स और आपकी जो लेग मसल्स हैं, ये टोन अप हो रही हैं. प्लस आपका ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है.
तो दोस्तों हमें बहुत अच्छी जानकारी भी मिल रही है और हम योगा एक्सरसाइज की डेमोंस्ट्रेशन भी देख रहे हैं. तो डॉक्टर साहब कैसा लगा? आप तो विशेषज्ञ हैं, कैसा लगा ये देखिए?
बहुत अच्छा है. शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो दिखाई गई. तो मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि ये जो पाया गया है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तन कर दें, समय पर सोना, समय पर उठना, 10 बजे सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के मेडिटेशन करें
जी,
और साथ में अपनी हम अपनी जीवन शैली में जैसे डाइट, भोजन ठीक, शाकाहारी भोजन समय पर खाएं, अच्छे चबा के खाएं, शांत रह के खाएं, सैर करें रोज
जी,
मतलब व्यायाम में, जैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए या स्पेशली जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, जैसे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, मोटापा है, हार्ट और दूसरी बीमारियां हैं, उन सब के लिए सैर करना बहुत मुफीद है. अगर सैर ढंग से की जाए, चुप रह करके, हम डिटेल में अगली बार इसमें बात कर सकते हैं,
जरूर
सैर कैसे करनी चाहिए, वो एक अपने आप में सब्जेक्ट है. तो वो अगर हम ढंग से करें और हम मतलब जीवन शैली को ढंग से परिवर्तन और मेडिटेशन का विशेष महत्व है, तो ये 2009 में इसके लिए अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में
जी,
कि हेल्दी एजिंग. मतलब आज हम एजिंग तो हम बढ़ रहे हैं, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, पहले 50 होती थी, आज 65 हो गई है
जी,
किंतु आज हम सभी बीमार हैं. 80 साल का आदमी 10 बीमारियों से ग्रसित है।
बिल्कुल।
तो हेल्दी एजिंग कैसे
जी, मतलब एक उम्रते बढ़ते पड़ाव में भी व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो।
तो जो हमारे जीन्स है ना, हमारे जीन्स है, जीन्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें एक टीलोमियर एंजाइम होता है, टीलोमियर होते हैं, टीलोमियर होते हैं, उसमें टीलोमेरेज एंजाइम होता है।
ओके।
तो जैसे हम एज होते हैं, टीलोमियर छोटे होते जाते हैं, क्रोमोसोम की लेंथ छोटी होती जाती है, तो टीलोमेरेज एक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। आप टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक, डेली सुबह उठ के मेडिटेशन करिए, डेली व्यायाम करिए, भोजन ठीक ढंग से खाइए, समय पर खाइए, सही ढंग से चबाइए, शांत रह के खाइए। अगर आप 3 महीने ये करें तो आपके बीमारी के जीन्स हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले जीन्स हैं
जी,
चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, गठिया की बीमारी हो, वो सारे जीन चुप हो जाएंगे।
क्या बात है। हम डॉक्टर साहब इस पे आप
प्रोटेक्टिव जीन्स एक्टिव हो जाएंगे, टेलोमेरेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आप एज होंगे, आपकी उम्र 80 साल होगी, 90 साल होगी, पर आप हेल्दी होंगे।
ये आपने
उम्र भी बढ़ेगी, और तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है
जी,
जो हमें समझना चाहिए कि हम जो हम बात कर रहे हैं, आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है 21 जून, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम सब हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि इसके कितने फायदे हैं।
डॉक्टर साहब इसके बारे में हम आपसे और गहराई में बात करना चाहेंगे जो हमारे अगले एपिसोड में, क्योंकि हमें वक्त से हम लेकर इस बात को और गहराई से समझना चाहते हैं। और उषा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे?
मैं भी यही उसमें जोड़ना चाहूंगी कि सचमुच एक योगी जीवन, जब योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो योगी जीवन शैली की ओर बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति भारत के इस प्राचीन योगी जीवन शैली से बहुत अपने आप में बेनिफिट्स पाएंगे, और जरूर है कि जैसे कहा, हेल्दी एजिंग होगी व्यक्ति की, और स्वस्थ होकर के सहजता से शरीर छोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जी, तो हम सबकी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। तो आइए योग के कुछ अनुभूतियों को जानते हैं एक क्लिप के द्वारा।
जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो हमारे मन में स्ट्रेसफुल थॉट चलते हैं, नकारात्मक संकल्प चलते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव अपने तन पर भी होता है। इसलिए राजयोग के अभ्यास से हर परिस्थिति में सकारात्मक चिंतन करने की कला हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीवन में सुख और दुख की अनुभूति हमारे चिंतन पर निर्भर होती है। जब हमारे मन में सकारात्मक संकल्प चलते हैं, शक्तिशाली संकल्प चलते हैं, तो हमें खुशी की अनुभूति होती है। और किसी कारण नकारात्मक संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। लेकिन राजयोग के अभ्यास से खुशनुमा जीवन जीने की कला हमें प्राप्त होती है। मैंने खुद देखा है कि राजयोग के अभ्यास शुरू करने से मेरे मन में हमेशा हीन भावना रहती थी कि मेरे मन में ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं और मेरे में इतने कमियां हैं, खामियां हैं, तो हीन भावना के कारण मेरे जीवन में प्रोग्रेस नहीं होता था। लेकिन राजयोग के अभ्यास से मेरा धीरे धीरे स्वमान जागृत होने लगा, और स्वमान से आत्मा में जो भी सुसुप्त शक्तियां होती हैं, डॉर्मेंट स्टेज में जो शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां हमारी जागृत होती हैं और हमारी ऊर्जा की लेवल बढ़ने लगती हैं। इसलिए स्वमान में रहना ये राजयोग हमें सिखाता है। और वैसे भी हम देखते हैं, आज हर इंसान अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो, मेरा व्यक्तित्व चुंबकीय व्यक्तित्व हो। लेकिन चुंबकीय व्यक्तित्व बनाने के लिए कुछ एक बुराइयों को, कमियों को, खामियों को निकालना जरूरी है, और दूसरी तरफ कुछ एक दिव्य गुणों को, अच्छाइयों को धारण करना जरूरी है। और ये दोनों बातों के लिए शक्ति की आवश्यकता है, जो हमें राजयोग से प्राप्त होती है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो शराब और सिगरेट की आदत मुझे थी, जिसको मैं छोड़ना भी चाहता था। डॉक्टर ने मुझे कहा, कि इससे आपको गले का कैंसर हो सकता है। मैंने कहा मैं भी छोड़ना चाहता हूं लेकिन मुझे शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे राजयोग का अभ्यास मैंने किया तो आत्मा में शक्तियां आने लगी और धीरे धीरे ये जो बुरी आदतें थी मेरी ऑटोमेटिक छूट गई। और जैसा जैसा अभ्यास राजयोग का करने लगा तो स्टूडेंट लाइफ में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा मन बहुत इधर उधर भटकता है, भागता रहता है। लेकिन मुझे राजयोग के अभ्यास से ये लाभ हुआ कि मेरी एकाग्रता की शक्ति बढ़ गई और जीवन में खुशी और अपना हैप्पीनेस भी बहुत अच्छी तरह से, उमंग बहुत अच्छी तरह से अनुभव होने लगा, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छे मार्क्स यूनिवर्सिटी में मिले। मुझे गोल्ड मेडल भी इस राजयोग के अभ्यास से ही मिला। ऐसा कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास और साहस ये दो दिव्य अस्त्र हमारे पास होना चाहिए। जीवन में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये दो हथियार हमारे पास होना जरूरी है, जो हमें राजयोग के अभ्यास से स्वतः ही प्राप्त होते हैं।
तो मैं आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज आप हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे, हमारे साथ इतने अमूल्य ज्ञान को आपने बांटा। और मेरा तो सचमुच मन हो रहा है कि मैं आज से ही इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, सही उसका खाता रखकर मैं अपने जीवन में लाऊं, और मेरे साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं उन सबको भी बहुत आनंद आया होगा। तो दोस्तों, योगी जीवन ही आनंद का जीवन है। ये आनंद आपको और चढ़ता रहे, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि की ओर बढ़ता रहे। इन शुभकामनाओं के साथ आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।